प्रॉब्लम्स को बाय हैप्पीनेस को हाय। इस प्रोग्राम में मैं ईला आप सभी का स्वागत करती हूँ। विचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हम सोचते हैं उस पर हमारा जीवन निर्भर करता है, उस पर हमारा भाग्य निर्भर करता है। अगर हम ये अंतर समझ पाएं कि हम कैसा सोच रहे हैं और हमें कैसा सोचना चाहिए, अगर यह अंतर समझ में आ जाए तो हम हमारे विचारों को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि मैंने ऐसा सोचा, पर इसमें गलत क्या सोचा। हम यह अंतर नहीं समझ पाते कि हमें क्या सोचना चाहिए था। तो इसी विषय में चर्चा करते हैं सिस्टर तृप्ति के साथ। ओम शांति सिस्टर तृप्ति।
ओम शांति।
तो सिस्टर तृप्ति, हम अक्सर ये कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं और सोचते हैं कि हमने वह कार्य सही किया और हमने सही सोचा उसके बारे में, पर कहीं ना कहीं तक हमें यह नहीं पता चलता कि हमारी सोच में ही कुछ गलत था। तो इसका निर्णय कैसे हो?
ईला, अगर मैं आपसे कहूं कि एक वर्ड दूंगी और आपको उस शब्द के बारे में, उस वर्ड के बारे में सोचना है 10 सेकेंड तक, तो अभी मैं आपको वह शब्द दूंगी और उस शब्द के बारे में आपको सोचना है। सो रेडी फॉर दिस?
यस श्योर।
तो मेरा शब्द है ट्री, टी आर ई ई, ट्री। तो सोचा आपने?
जी बिल्कुल।
तो आपने क्या देखा?
मैंने देखा एक ट्री को, एक वृक्ष को, उस पर लगे पत्ते को, फूलों को, फलों को और उसकी ब्राउन डंगाली को।
तो जब हम अपने सोच के पैटर्न के बारे में बात करते हैं, तो अभी जैसा कि हमने देखा, मैंने कहा टी आर ई ई, ट्री, इस वर्ड के बारे में सोचना है। और ईला, जैसे कि आपने क्या सोचा, तो आपने उसके इमेज को देखा, आपने उसके पिक्चर को देखा, पर उस शब्द को, उस वर्ड को, टी आर ई ई, इस शब्द को नहीं देखा। यह इसलिए क्योंकि हम जानते हैं हमारा राइट ब्रेन कभी कभी एक्टिवेट हो जाता है और कभी कभी हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिकल ब्रेन है वह नॉर्मली हमारा एक्टिवेटेड होता है, पर कभी कभी राइट ब्रेन किक स्टार्ट हो जाता है। और हमने यह भी देखा कि जब हम इमेजेस देखते हैं, जब हम पिक्चर्स देखते हैं, तो इमेजेस और पिक्चर्स मेरा नेचुरल गुण है, मेरी नेचुरल टेंडेंसी है। जबकि हम अपने मन को, अपने सोच को फोर्स करते हैं लॉजिकली सोचने के लिए, हम उसे फोर्स करते हैं कि शब्द पढ़ो, टी आर ई ई, शब्द को पढ़ो। जबकि वो क्या पढ़ना चाहता है? वह पढ़ना चाहता है उसके इमेज को, उसके पिक्चर को, क्योंकि इमेज और पिक्चर उसके लिए नेचुरल है, पर शब्द उसके लिए नेचुरल नहीं है। और ईला, अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अब हम जानते हैं आपको क्या करना है। तो अब आपको यह क्लियर है कि आपको वर्ड देखना है,
शब्द देखना है, उसकी इमेज नहीं,
इसकी इमेज नहीं देखनी इस बार। तो अब हम आपको फिर से एक शब्द देंगे, 10 सेकेंड का समय देंगे और आपको देखना है शब्द को, इमेज को नहीं। और हमारा शब्द है हाउस, एच ओ यू एस ई, हाउस। तो आपने सोचा इस शब्द के बारे में?
जी, मैंने सोचा इस शब्द के बारे में और एच ओ यू एस ई, हाउस का पिक्चर देखने की कोशिश की, पर दिखा मुझे असली हाउस। बहुत ही कठिन था अपने आप को रोकना और हाउस शब्द देखना रादर देन एक रियल हाउस।
तो हम देख रहे हैं कितना कठिन है अपने नेचुरल टेंडेंसीज को बाय बाय कहना, उन्हें फोर्सफुली पीछे करना, और जो अननेचुरल है, मन वर्ड्स, सेंटेंसेस, थियोरी, जो अननेचुरल है उसको फोर्सफुली देखना। क्या अब हम रिलेट कर सकते हैं हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है? हमारी एजुकेशन सिस्टम वह किस पर बेस्ड है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में टेक्स्ट होती है, थ्योरी होती है, वर्ड्स होती है, डोमिनेशन होता है थ्योरी का। तो इसका मतलब हमारा बच्चा जब भी उसकी इमेज देखना चाहता है, क्योंकि वह नेचुरल है, पर हम क्या कहते हैं, नहीं, इमेज नहीं, उस वर्ड को देखना है, उस सेंटेंस को याद रखना है, उस पैराग्राफ को रटना है, 2 × 2 = 4 रटना है, और इस रटने रटने में या फिर इस सेंटेंसेस को याद रखने में, थ्योरी को याद रखने में क्या हो रहा है, हम फोर्सफुली उसके लॉजिकल ब्रेन माना लेफ्ट ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसका राइट ब्रेन जो क्रिएटिव ब्रेन है, उसकी नेचुरल टेंडेंसीज हैं, उसको कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं। तो जब हम पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, काम के बारे में बात कर रहे हैं, वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक नज़र डालें कि वर्क और प्ले इन दोनों में क्या फर्क है। वर्क में भी हम अपने फिजिकल एनर्जी को यूज करते हैं, मेंटल एनर्जी को यूज करते हैं, और अगर स्पोर्ट्स देखें जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या किसी भी तरह का गेम, उसमें भी क्या होता है, हमारी फिजिकल एनर्जी तो कंज्यूम होती ही है, हमारी मेंटल एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है।
सिस्टर तृप्ति, ये जो काम है और खेल है, दोनों में ही आपने कहा कि सेम एनर्जी लग रही है और सेम फिजिकल लेबर लग रहा है, तो ऐसा क्यों होता है कि हमें काम करने में ज़्यादा थकान होती है, हमारा मन नहीं लगता, जबकि खेलने में मन भी लगता है और हमें थकान महसूस नहीं होती?
आपने बिल्कुल सही सवाल किया इला। दोनों में देखा जाए तो सिमिलर तरह की एनर्जी लग रही है, जितनी फिजिकल लग रही है उतनी ही मेंटल भी लग रही है। हाँ, थोड़ा प्रपोर्शन आगे पीछे होगा, पर अल्टीमेटली एक तरह की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। पर अगर हम देखें खेल क्या है, खेल या प्ले वह एक्ट है जिसे मैं करना चाहता हूँ, मैं करता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आई हैव टू डू इट। तो आई हैव टू डू इट इज नॉट करेक्ट, आई वॉन्ट टू डू इट ये एप्लीकेबल है खेल के बारे में, प्ले के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। और जबकि हम पढ़ाई देखें या वर्क देखें या काम देखें, वहां क्या फैक्टर आ जाता है, वहां हैव टू डू, वॉन्ट टू डू बहुत कम नजर आता है, लेकिन हैव टू डू, यू मस्ट डू। पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे, एग्जाम नहीं क्लियर करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम अपने आप को सक्सेसफुल कैसे कहलाएंगे। तो यह जो फैक्टर है, हैव टू डू एंड वॉन्ट टू डू, दिस इज द फैक्टर दैट मेक्स द डिफरेंस। और यह फैक्टर क्यों प्ले करता है, क्योंकि अगर हम प्ले देखें, खेल देखें, तो उसमें हम वह करते हैं जो हम करना चाहते हैं, माना हम अपने नेचुरल टेंडेंसीज को, नेचुरल एबिलिटीज को, नेचुरल कैपेसिटी को यूज करते हैं उसमें, क्योंकि हमें नेचुरल कैपेसिटी को यूज करना पसंद है। जैसे कि इमेजेस के बारे में सोचना, पिक्चर्स के बारे में सोचना, मूवी, साउंड, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब हमारी नेचुरल टेंडेंसीज हैं, और ये सब किसका काम है, राइट ब्रेन माना क्रिएटिव ब्रेन का। तो हमें यह क्रिएटिव ब्रेन को यूज करना पसंद है, और खेलते समय हमारे पास आजादी है कि हम जो चाहें, जैसा चाहें, वैसा हम कर सकते हैं, और जो हमें पसंद है उसमें हमें इंटरेस्ट आता है, और क्योंकि इंटरेस्ट आता है, वह मेरे पसंद का काम है, इसलिए थकान भी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये ठीक है, हमने बिल्कुल सही कहा कि इसमें एनर्जी कंज्यूम भी हो रही है, फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी, पर जो मुझे पसंदीदा काम करने में मजा आ रहा है, उस मजे के कारण एनर्जी क्रिएट भी हो रही है। और क्योंकि एनर्जी क्रिएशन मजा भी बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उतनी ही एनर्जी क्रिएट हो रही है, इसलिए थकान की महसूसता हमें कम होती है, या धीरे धीरे जब हम ज्यादा खेल लेते हैं तब हमें थकान की महसूसता होती है। तो इस प्रकार हमने देखा, हमारी नेचुरल एबिलिटीज के सहारे हम कोई काम करें तो हमें ज्यादा पसंद आता है, हमें उसमें ज्यादा उत्साह उमंग होता है, ज्यादा इंटरेस्ट होता है और ज्यादा लगाव भी होता है, और जहाँ लगाव होता है वहाँ कार्य कुशलता भी आती है, और हमारे इनपुट्स के आधार पर हमारे जो आउटपुट्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। ईला, अगर मैं आपको इनवाइट करूँ अपने घर पर लंच के लिए,
ज़रूर आएंगे।
पर पहले रास्ता तो समझ लीजिए, यहाँ से सीधे सीधे जाएं और दो गली छोड़ के एक राइट टर्न आएगा, वहां से राइट टर्न लें और सीधे सीधे जाएंगे तो एक पान की शॉप मिलेगी। उस पान की शॉप के दो शॉप्स के बाद में एक मेडिकल स्टोर मिलेगा, और वहां से गली जाएगी लेफ्ट की तरफ, और उस लेफ्ट गली में मुड़ जाएं और एक लगी हुई राइट गली है, उसमें अगर मुड़ जाएं तो बस तीसरा घर मेरा है।
ये याद रखना तो बहुत ही कठिन है सिस्टर तृप्ति। थोड़ा सा याद रहेगा कि सीधे जाके लेफ्ट जाना है, उसके बाद कुछ याद नहीं रह रहा।
तो अगर ईला मैं ये जो कह रही हूँ उसके साथ साथ अगर मैं आपको पेपर पे ड्रॉ करके दिखाऊं, चित्र दिखाऊं कि सीधे जाना है फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न लेना है, और अगर ये पूरा मैप बना के दूं बताते बताते, तो क्या आपको ज्यादा क्लियर हो सकेगा?
अगर बताने के साथ साथ मैप भी देखा जाए तो मुझे ज़रूर याद रहेगा कि कैसे आना है आपके घर।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब हम सिर्फ बातें सुनते हैं, माना लेफ्ट ब्रेन का उपयोग करते हैं जो कि लॉजिकल ब्रेन है, तो हमारे ग्रास्प करने की शक्ति उतनी ज़्यादा नहीं होती। पर अगर लेफ्ट ब्रेन के साथ साथ अगर राइट ब्रेन का भी इस्तेमाल किया जाए, माना इमेजेस दिखाई जाए, पिक्चर्स दिखाए जाए, बताते बताते देखा भी जाए, तो हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने दोनों ही ब्रेन्स को यूज कर रहे हैं, और कैसे यूज कर रहे हैं, दोनों को बैलेंस्ड वे में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने देखा कि जितना हम अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस तरीके से यूज करेंगे उतना ही हम अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम यूज कर सकेंगे। तो अब हम समझ सकते हैं हमारे बच्चों के लिए क्या आवश्यक है, पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, नाना नानी, दादा दादी, इन सब से मैं अनुरोध करूंगी कि यह हम ध्यान से देखें, इस जानकारी का हम उपयोग करें हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। हमारी बच्चों की पढ़ाई जो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, एक चैलेंज बन गया है, न सिर्फ बच्चों के लिए पर हम पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति हमने जैसा देखा यह लीनियर है। आज की शिक्षा पद्धति हमें लॉजिकल ब्रेन को यूज़ करने पे मजबूर करती है, और हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव ब्रेन का उपयोग करना है ताकि लॉजिकल ब्रेन और क्रिएटिव ब्रेन के यूज़ को हम बैलेंस कर सकें। और इस बैलेंस्ड अप्रोच से क्या होगा, पढ़ाई जो अब तक के लिए एक प्रॉब्लम, एक समस्या बन गई थी बच्चे के लिए, अब वही पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। क्यों इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि अब वह अपने क्रिएटिव ब्रेन को भी यूज़ कर रहा है, जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है उसे भी यूज़ कर रहा है, पढ़ाई जो कि शब्दों और सेंटेंसेस के फॉर्म में है उसे वो पिक्चर और इमेजेस के रूप में देख रहा है, और पढ़ते पढ़ते वह अपने नेचुरल टेंडेंसीज का मजा भी ले रहा है। और इसलिए क्या होगा, अब जो पहले वर्क था, जो पहले काम था, वह भी क्या बन जाएगा, प्ले, वह भी क्या बन जाएगा, गेम। तो इस प्रकार से अब तक जो कुछ भी हमें वर्क लगता था, काम लगता था, अब हम उसे परिवर्तित करने वाले हैं खेल में, प्ले के फॉर्म में, ताकि वह हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और इसलिए आसान भी लगे। तो हमने देखा जैसी हमारी शिक्षण पद्धति है, कैसी है, हमारे टेक्स्ट बुक में जो लेसन होता है वह लीनियर होता है, माना सीधे सीधे लिखा जाता है, वर्ड्स के बाद वर्ड्स, सेंटेंसेस के बाद सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स के बाद पैराग्राफ्स। और हमें क्या करना है, इस लीनियर पैटर्न को कन्वर्ट करना है रेडियल पैटर्न में। तो अब यह रेडियल पैटर्न क्या है, तो वह टेक्स्ट जो लिखा था वर्ड के बाद वर्ड और सेंटेंस के बाद सेंटेंस, इस फॉर्म में लिखा था उसे हमें कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में? इमेजेस के फॉर्म में, और साथ में वर्ड्स को भी हमें यूज करना है। जब हम इमेजेस और वर्ड्स को यूज करेंगे तो क्या होगा? हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों एक साथ चलेगा, दोनों बैलेंस्ड फॉर्म में चलेंगे। तो अब से हमें क्या करना है? जो भी लीनियर वे ऑफ थिंकिंग था, माना सीधे सीधे हम सोचते थे सेंटेंसेस के बाद सेंटेंसेस, और इस प्रकार एक लेसन को याद करने की कोशिश करते थे, उसे अब हमें पढ़ना है, उसे अब हमें देखना है इमेजेस के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, और साथ में वर्ड्स को भी हमें यूज करना है उस चैप्टर को याद करने के लिए। और इसे हम कहते हैं माइंड मैप। अपने माइंड में हम ऐसा मैप बनाते हैं जिससे हमें लेसन आसानी से याद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, लेसन में लिखा हुआ है कि पढ़ाई और खेल, इसके बैलेंस्ड यूसेज से हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती है। तो ये जो वर्ड्स हैं और ये जो सेंटेंसेस हैं, अब तक हम बच्चों को उन्हें सेंटेंस के रूप में याद कराते थे, क्योंकि वह हमारी लीनियर पद्धति थी याद करने की और सोचने की। अब हमें इसे क्या करना है? थोड़े से वर्ड्स में और थोड़े से इमेजेस को यूज करके इस सेंटेंसेस को हमें याद रखना है। तो ईला, अगर हम इस सेंटेंस की तरफ गौर करें, अगर हम काम के बारे में बात करें, तो आपके मन में कौन सा पिक्चर आता है?
काम के बारे में सोचते ही मेरे मन में मेरे ऑफिस का पिक्चर आता है। मुझे मेरी चेयर दिखने लगती है जहां मैं बैठ के काम करती हूँ।
तो किसी को ऑफिस नजर आएगा, बच्चों को स्कूल नजर आएगा, किसी को बुक्स नजर आएंगी, किसी को कंप्यूटर नजर आएगा। तो हमें जो भी पिक्चर एसोसिएट हम करते हैं उस वर्ड से, वो पिक्चर देखना है। और जब इला मैं कहती हूँ प्ले, खेल, तो इस शब्द से आप क्या पिक्चर देखती हैं?
इस शब्द को सोचते से ही मुझे मेरा पसंदीदा खेल याद आने लगता है। मुझे बैडमिंटन याद आने लगता है कि कैसे मैं खेलती थी, वो कोर्ट दिखने लगता है।
तो किसी को बैडमिंटन याद आता है, किसी को बैडमिंटन कोर्ट याद आता है, किसी को फुटबॉल, किसी को क्रिकेट, ऐसा कोई भी इमेज हमारे मन में आ सकता है। तो अभी हमने इस सेंटेंस के दो शब्द पकड़े, खेल जिसकी हमने एक इमेज बनाई, और पढ़ाई, इसकी हमने एक दूसरी इमेज बनाई। और लेसन में क्या लिखा है? इन दोनों को बैलेंस वे में यूज करना है। और जब हम बैलेंस बोलते हैं तो मन में कौन सा पिक्चर आता है?
तराजू का।
तराजू का। तो अभी हमको विजुअलाइज करना है कि तराजू के एक पल्ले में खेल है और दूसरे पल्ले में पढ़ाई या काम है। और इस सेंटेंस के आगे क्या लिखा है? अगर खेल और काम या पढ़ाई को बैलेंस्ड तरीके से यूज किया जाए तो निर्णय शक्ति बढ़ती है।
तो सिस्टर तृप्ति, इसका यह अर्थ हुआ कि हम जब बच्चों की पढ़ाई कराएं, उन्हें सेंटेंसेस याद कराएं, तो इसका एक माइंड मैप बनाएं, ताकि इमेजेस बनाए उसकी, और उन इमेजेस को वर्ड्स के साथ रिलेट करके उनको दिखाएं, तो इससे उनके मन में ये हरदम के लिए रह जाएगा और उनके लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी।
बिल्कुल सही है। तो जैसे कि हमने जाना, हमारा ब्रेन एक इंस्ट्रूमेंट है। इस ब्रेन को यूज कैसे करना है? अपना जीवन सुखी बनाने के लिए, अपना जीवन आसान बनाने के लिए, यह चॉइस हमारे पास है। और अगर हम बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करें, तो बच्चों की पढ़ाई हम आसान कैसे बना सकें, उनके लिए भी और हमारे लिए भी, यह हमारे लिए सोचना आवश्यक है। और अगर हम इस प्रकार की पद्धति माइंड मैप का उपयोग करके देखेंगे, तो हम यह जानेंगे कि इस प्रकार इमेजेस के साथ साथ वर्ड्स अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें ज़्यादा आसानी होगी बच्चों को पढ़ाई करने में।
सिस्टर तृप्ति ने आज हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन्होंने हमें बताया कि हमारी थिंकिंग लीनियर ना होके रेडियल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन का भी आकार रेडियल है, अर्थात बच्चे जब पढ़ाई करें तो उन्हें लॉजिकल ब्रेन और क्रिएटिव ब्रेन दोनों का उपयोग करना चाहिए, और जो भी याद कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सेंटेंसेस वर्ड के साथ एक मैप बनाएं, उसके साथ इमेजेस और वर्ड्स को लिंक करें, तो वह चीज़ हरदम के लिए उनके साथ रहेगी। हम आशा करते हैं कि आज ये जानकारी आपके बहुत काम आए और आप इसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनाएं। इन सभी बातों के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं सिस्टर तृप्ति का। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।
मैं एक समाज सेविका हूँ, समाज सेविका और लॉयनेस से समाज के और भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हूँ, उसी के साथ लॉयनेस से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं ब्रह्म कुमारी के ज्ञान में अभी अभी आई हूँ, मुझे कुछ ही समय यहाँ पर आए हुए हुआ है, पर इनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुई। इनका जब तक जहाँ तक मैंने सोच मेरे को ज्ञान मिला है, जहाँ तक मेरा विचार है, इन्होंने यहाँ पर हम थॉट्स विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं, विचार जो कि हमारे दिमाग में आते हैं। जब हमारे कोई भी विचार ब्रेन में आते हैं तो उसको हम चरितार्थ करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं हाथों द्वारा, कर्मों द्वारा। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। और अगर जैसे कि बोला जाता है ना कि जैसे हम करते हैं वैसे ही हम पाते हैं, अगर हम अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे बुरा पाएंगे। यह इनकी विशेषता है जो मुझे बहुत अच्छी लगी।
अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कलि हर फूल से वो प्यार करता, हर कलि हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। अक्षय कोश सदा शिव है और हम मधुबिनी संताने हैं।
सत्यम शिवम सुंदरम
परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचाने हैं।
सत्यम शिवम सुंदरम,
ज्योति बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर। मन उसको नमन बार बार करता,
मन का स्वयं श्रृंगार करता,
हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता।
शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है।
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता।
शिव अनादि है, शिव अनंत है,
मधुबन शिव वसंत है।